यरमिया अध्याय 50। यरमिया की पुस्तक अध्याय 50 के आरंभिक शब्द है। यरमिया अध्याय 50 पद 1। बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यरमिया भविष्यत वक्ता के द्वारा ये वचन कहा। अध्याय 51 के अंत में ये घोषणा की गई है और ये कहना, यों ही बाबुल डूब जाएगा और मैं उस पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि वो फिर कभी न उठेगा। यूं उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही ठहरेगा और वे थके रहेंगे। दूसरे शब्दों में यह यरमिया के भविष्यवाणियों का अंत है। इसे आपके सामने लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको वचन की आलोचना की मूर्खता बताऊं, क्योंकि यह धर्मशास्त्र के उन भागों में से है जिनके लेखक के बारे में संदेह किया जाता है। ये लोग अपने आप को विचारक कहते हैं। वे यरमिया की पुस्तक के इन दो अध्यायों के लेखक के विषय संदेह करते हैं कि वो यरमिया नहीं है। इस चुनौती का कारण निस्संदेह यह है कि यरमिया बाबुल के विनाश के विषय कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करता है जो उसके पतन से 65 वर्ष पूर्व की भविष्यवाणी है। उसे कैसे इसका ज्ञान हुआ कि ठीक ऐसा ही होगा? इसलिए ये निश्चित है कि इन अध्यायों का लेखक यरमिया नहीं है, यद्यपि वो अध्याय 50 के आरंभ में लिखता है। यहोवा ने यरमिया भविष्यत वक्ता के द्वारा और अंत में वो लिखता है, यहां तक यरमिया के वचन हैं। ये लोग जो अपने आप को ज्ञानवान बाइबल के पंडित कहते हैं, इन अध्यायों का यरमिया द्वारा लिखे जाने के पक्ष को चुनौती देते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए मेरे मन में लगभग नहीं वरन बिल्कुल इज्जत नहीं है जो संपूर्ण बाइबल के विषय अपने महान ज्ञान का दान करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि वे बाइबल के हर एक बात को चुनौती दें। इनके विचारों पर ध्यान देना ही मूर्खता भरी समय की बर्बादी है। समस्या तो तब आती है जब कोई सेमिनारी में प्रवेश करता है और अपने अध्ययन क्रम में यरमिया पर अध्ययन करता है, तब वो इन मूर्खता भरी कल्पनाओं का कारण खोजने में संपूर्ण पुस्तक के अध्ययन में अधिक समय लगा देता है। अधिकांश सेमिनारियों में यरमिया का अध्ययन कुल मिलाकर यहीं तक सीमित रहता है कि कैसे सिद्ध किया जाए कि इसका लेखक यरमिया नहीं था। ये केवल समय और पैसे की बर्बादी है। मैं इनके साथ वही करना चाहता हूं जो यरमिया ने जोरिया से कहा कि वो पुस्तक के साथ करें कि उसको एक चट्टान में बांधकर फरात नदी में डाल दे और कहे, बाबुल इसी प्रकार डूब जाएगा। मैं भी चाहता हूं कि उनके गले में चक्की का पाट बांधकर उन्हें इस पुस्तक के साथ ही डाल दूं। निस्संदेह यीशु वहां खड़ा होकर मुझे शाबाशी देगा, क्योंकि उसने कहा था कि यदि कोई बच्चों के लिए ठोकर का कारण बने तो उनके गले में चक्की का पाट बांधकर गलील सागर में डाल देना ही अच्छा है। ऐसे विद्वानों ने अनेक युवा विद्यार्थियों के विश्वास को ठोकर खाने पर विवश किया है जो सेमिनारी गए हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सेमिनारी ने परमेश्वर में उनके विश्वास का नाश कर दिया। मैं इन पीएचडी विद्वानों में से एक एक के साथ प्रभु की सम्मति को पूरा करना चाहता हूं। अतः बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने ये वचन कहा। ये वचन यरमिया के अपने नहीं थे। यरमिया तो परमेश्वर का केवल प्रवक्ता था। ये हमारी भूल है कि हम कहते हैं यरमिया ने कहा था। नए नियम में जब पत्रस दाऊद के भजन का संदर्भ दे रहा था तब उसने कहा और पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से कहा, वो पवित्र आत्मा का लेखक होने के तथ्य को उजागर कर रहा था। वो ये मानता है कि दाऊद केवल साधन था जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा बोलता था। इसी प्रकार यरमिया भी पवित्र आत्मा का एक साधन था जिसके माध्यम से वो संदेश देता था। अतः बाबुल और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यरमिया भविष्यद् वक्ता के द्वारा ये वचन कहा। यरमिया अध्याय 50 पद 2। जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ मत छिपाओ कि बाबुल ले लिया गया, बेल का मुंह काला हो गया। यहां पर प्रभु शब्द का अर्थ प्रमुख देवता है। यरमिया अध्याय 50 पद 2 और 3। मरोदेक बेबीलोन का एक और देवता विस्मित हो गया, बाबुल की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडौल मूर्तें विस्मित हो गई है, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां तक उजाड़ कर देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी ना रहेगा, सब भाग जाएंगे। यरमिया बाबुल के विनाश की भविष्यवाणी देता है। ये धर्मशास्त्र का वो भाग है जिसकी भविष्यवाणी दो मुखी है। एक तो बाबुल का विनाश जैसा कि यहां कहा गया और दूसरा प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 18 के अनुरूप आत्मिक बाबुल अर्थात अंतिम दिनों का धर्म तंत्र तथा अति विकासमान व्यापार तंत्र। अध्याय 17 में धर्म तंत्र का नाश तथा अध्याय 18 में व्यापार तंत्र का नाश, जिन्हें आत्मिक परिप्रेक्ष्य में बाबुल कहा गया है, जिसका अर्थ है अव्यवस्था। अतः ये बड़ी रोचक बात है कि अध्याय 50 और 51 प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 17 और 18 के समानांतर है। यूहन्ना यरमिया की पुस्तक का ज्ञाता था और प्रभु यूहन्ना के द्वारा बाबुल के धर्मतंत्र और व्यापार तंत्र के विनाश की भविष्यवाणी के लिए यरमिया के शब्दों का ही प्रयोग करता है। परमेश्वर प्रथम संसार के राजा और संभवतः संसार पर राज करने वाले साम्राज्यों में सबसे महान राज्य पर अपने दंड की भविष्यवाणी देता है। आपको ध्यान होगा कि नबुकदनेज़र ने स्वप्न में एक प्रतिमा देखी थी जिसका सिर सोने का था। दानियल ने उसे कहा था, हे नबुकदनेज़र, तू सोने का सिर है क्योंकि तेरा राज्य सबसे महान है, परंतु तेरे राज्य के स्थान पर दूसरे राज्य का उदय होगा जो तुझसे उसी प्रकार उच्च होगा जैसे चांदी सोने से, क्योंकि तूने प्रतिमा में चांदी का वश देखा है, अर्थात तेरे राज्य के स्थान पर उससे छोटा राज्य आएगा। कहने का अर्थ यह है कि विश्व के इतिहास में यदि कोई राज्य हुआ है तो बाबुल का राज्य ही सबसे महान था, और यशाया तथा यरमिया की भविष्यवाणियों के अनुसार बाबुल ऐसा नष्ट हुआ कि मैं कहने का साहस कर सकता हूं कि आपने शायद किसी बाबुलवासी को देखा ही नहीं होगा। यदि आप किसी बाबुलवासी के वंशज से मिले भी होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो बाबुलवासी का वंशज है, क्योंकि वे एक जाति रूप में अब है ही नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार उनमें से कोई भी ना रहेगा, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि बाबुल खंडर हो जाएगा और वहां गीदड़ और उल्लू बोलेंगे। आप यदि आज वहां जाएंगे तो केवल खंडर ही पाएंगे। अपने समय के महान नगर में जंगली जानवर आज वास कर रहे हैं। विश्व का सबसे महान नगर, 12 मील लंबा और 12 मील चौड़ा नगर, 300 फुट ऊंची दीवारों से घिरा, जिनकी चौड़ाई 80 फुट थी। बगीचों का नगर, वैभव ही वैभव, उंडेलता नगर, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वो इसका नाश कर देगा और उन दिनों वो अपने लोगों को बंधुआई से लौटा ले आएगा। यहां भी भविष्यवाणी की दो पूर्तियां हैं, एक निकट भविष्य में और दूसरी दूर भविष्य में, जिसमें उनका व्यापार तंत्र और धर्म तंत्र नाश होगा। जब प्रभु फिर से आएगा, वो अपनी प्रजा को पृथ्वी के कोने कोने से लेकर आएगा और वे यरूशलेम में वास करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भविष्यवाणी की दो पूर्तियां हैं। एक बार ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है और एक बार और ये भविष्यवाणी इसी प्रकार पूरी होगी। अतः जब बाबुल का नाश होगा, यरमिया अध्याय 50 पद 4, यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इसराइली और यहूदा एक संग आएंगे। इसराइल के वंशजों के 10 कुल उत्तरी राज्य में थे, जिसे इसराइल कहते थे, और शेष 2 कुल दक्षिणी राज्य में थे, जिसे यहूदा कहते थे। परमेश्वर कहता है कि जब बाबुल का नाश होगा, तब वे एक होकर फिर से अपने देश आ जाएंगे। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो एंग्लो सैक्सन जाति, इंग्लैंड के आदिवासियों को इसराइल के भटकी हुई जाति कहते हैं, और उनका कहना है कि ये भटके 10 कुल है, परंतु ये धर्मशास्त्र के आधार पर सही नहीं है। बाइबल कहती है इसराइल के घर की खोई भेड़े, ना कि भटके हुए कुल। इसराइल के वंशजों में से कोई नहीं खोया है। परमेश्वर उनमें से एक एक को जानता है कि वे कहां हैं। परमेश्वर जानता है कि वे कहां हैं, इसलिए वह उन्हें खोया हुआ नहीं कहता है। और डेनमार्क के लोगों को वे दान का कुल कहते हैं, जो जाकर डेनमार्क में बस गए। उनके विचार में इब्रानी शब्द ईश का अर्थ है पुरुष, इसलिए दान का पुरुष अर्थात डैनिश। और इस प्रकार वे स्वीडन को इंग्लैंड वासियों को इसराइल के वंशज से जोड़ते हैं। अब जोसेफ स्मिथ कहता है कि नेफी जाति प्रशांत महासागर को सरकंडों की नावों में पार करके दक्षिण अमेरिका गए, और इस प्रकार रेड इंडियन भी खोया हुआ कुल हो गया। जो भी लोग कहे इसराइल और यहूदा एकत्रित किए गए हैं, ये भविष्यवाणी थी कि वे साथ साथ लौट आएंगे। यरमिया अध्याय 50 पद 4 में आगे लिखा है, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। इस पुनस्थापना की प्रतिज्ञा दी गई है कि यद्यपि वे तितर बितर है, बाबुल द्वारा बंदी बनाकर ले जाए गए हैं, वे रोते हुए वापस आएंगे और अपने यहोवा को खोजेंगे। यरमिया अध्याय 50 पद 5, वे सियोन की ओर मुंह किए उसका मार्ग पूछते आएंगे। उनमें अधिकांश जनों का जन्म बाबुल में हुआ था, इस कारण वे सियोन को नहीं पहचानते थे। वे वहां का मार्ग भी नहीं जानते थे, अतः यात्रा करते समय उन्हें वहां पहुंचने का मार्ग पूछना आवश्यक था। वे उसका मार्ग पूछते आएंगे। यरमिया अध्याय 50 पद 5 में आगे लिखा है कि आओ हम यहोवा से मेल कर ले, सियोन की तरफ फिरे, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली न जाए परंतु सदा स्थिर रहे। उनके निर्वासन का मुख्य कारण था कि उन्होंने यहोवा के साथ बांधी वाचा को भुला दिया था। वे परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा को भुलाकर मूर्ति पूजा में लग गए थे, परंतु अब उन्होंने समर्पण किया कि वे उसके साथ ऐसी वाचा बांधेंगे जो कभी भूली ना जाए वरन सदा स्थिर रहे। यरमिया अध्याय 50 पद 6। परमेश्वर पुकारता है, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़े हैं, चाहे वे खो गए अर्थात बंधुआई में गए, भटक गए अर्थात मूर्ति पूजा की, परंतु परमेश्वर उन्हें अब भी अपनी प्रजा कहकर पुकारता है। मेरी प्रजा, मेरी खोई हुई भेड़े हैं, उनकी मुख्य समस्या थी। यरमिया अध्याय 50 पद 6 में आगे लिखा है, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है, वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई है। परमेश्वर चरवाहों को दोष दे रहा है। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, याकूब अध्याय 3 पद 1, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। झूठे भविष्यद् वक्ताओं और झूठे चरवाहों के लिए परमेश्वर के पास कोमल वचन नहीं है। वे जो परमेश्वर के नाम से वचन सुनाते हैं और उनका उद्देश्य स्वार्थ और धन संचय है, तथा वो परमेश्वर की भेड़ों के कल्याण का विचार नहीं रखते और अपने स्वार्थ को सर्वोपरि समझते हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर की ओर से संगीन दोष है, क्योंकि ऐसे चरवाहे भेड़ों को पथ भ्रष्ट करते हैं, उनको अविश्वास की ओर ले जाते और अंततः उन्हें परमेश्वर पर ही विश्वास से दूर कर देते हैं। यरमिया अध्याय 50 पद 7 से लेकर 12 तक, जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए, और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बाबुल के बीच में से भागो, कसदियों के देश से, जैसे बकरे अपने झुंड के अगवे होते हैं वैसे ही निकल आओ, क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बाबुल पर चढ़ा ले आऊंगा, और वे उसके विरुद्ध पांक्ति बांधेंगे और उसी दिशा से वे ले लिया जाएंगे। उनके तीर चतुर वीर के से होंगे, उनमें से कोई अकारत ना जाएगा, और कसदियों को देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा, यहोवा की ये वाणी है। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और हुलसते हो और घास चरने वाली बचिया की नाई उछलते और भलवंत घोड़ों के समान हिन हिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वो सब जातियों में नीच होगी, वो जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। ये राष्ट्र जो कभी पृथ्वी का स्वर्ग था नाश होने जा रहा है। यरमिया अध्याय 50 पद 13 से लेकर 15 तक, यहोवा का क्रोध के कारण वो देश निर्जन रहेगा, वो उजाड़ ही उजाड़ होगा, जो कोई बाबुल के पास से चलेगा वो चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुधारियों, बाबुल के चारों ओर उसके विरुद्ध पांक्ति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपना ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। सो तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। ये उक्ति प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में भी प्रकट होती है। परमेश्वर बाबुल के व्यापार तंत्र के विनाश की भविष्यवाणी देता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 पद 6। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो। यहां बाबुल के विनाश का पूर्व अनुमान है। उसके दीवारें ढा दी जाएगी और जैसे हम देख चुके हैं वे 300 फुट ऊंची और 80 फुट चौड़ी थी। यरमिया ने उन दीवारों के लिए कह दिया था कि वे ढा दी जाएंगी और ऐसा ही हुआ। यरमिया अध्याय 50 पद 16 से लेकर 19 तक। बाबुल में से बोलने वाले और काटने वाले दोनों को नाश करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरे और अपने अपने देश को भाग जाएं। इसराइल भगाई हुई भेड़ है, सिमों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अशूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बाबुल के राजा नबूकदनेज़र ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो जैसे मैंने अशूर के राजा को दंड दिया था वैसे ही अब देश समेत बाबुल के राजा को दंड दूंगा। मैं इसराइल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वो कर्मेल और बाशान में फिर गिलाद में फिर भर पेट खाने पाएगा। ये उत्तरी राज्य इसराइली है, ना कि दक्षिणी राज्य यहूदा। यरमिया अध्याय 50 पद 20। यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इसराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। मेरे लिए तो ये धर्मशास्त्र का बड़ा ही मन भावन गदांश है। उन दिनों में इसराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। कारण ये नहीं कि उनकी जाति ही नाश हो जाएगी, परंतु इसलिए कि परमेश्वर ने उनके अधर्म क्षमा कर दिए हैं। दाऊद ने कहा, भजन संहिता 32 पद 1 और 2, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। पौलुस दाऊद के मुख से पवित्र आत्मा के वचनों का संदर्भ देते हुए रोमियो के अध्याय में यही सत्य प्रकट करता है। रोमियो अध्याय 4 पद 8, धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। ये धन्य मनुष्य कौन है? ये वो मनुष्य है जो मसीह यीशु में विश्वास रखता है और उस पर भरोसा रखता है। ये जान लेना महिमामय होता है कि मैं ज्योति में चलता हूं जैसे कि वो ज्योति में है। जब मैं उसमें विश्वास रखता हूं और इस पर भरोसा रखता हूं, तब मसीह यीशु का लहू मुझे पापों से लगातार धोता रहता है और हिमसा उज्जवल बनाता रहता है। मुझ में कोई पाप नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में क्षमा कर दिया है और परमेश्वर के प्रेम का कार्य मुझ में चलता रहता है, क्योंकि मेरे पापों से धोकर मुझे शुद्ध करने का उसका काम चलता रहता है। यहूदा और इसराइली के लिए भी परमेश्वर यही कहता है कि वे खोजेंगे तो भी स्वयं में पाप नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। कहा गया है कि शैतान भाइयों पर दोष लगाता है। वो दिन रात परमेश्वर की उपस्थिति में दोष लगाने का अवसर खोजता रहता है, परंतु प्रभु के रहते उसे हम पर दोष लगाने में मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि प्रभु उसे मुंह तोड़ जवाब देता है। कैसा पाप? मैं तो कोई पाप नहीं देखता। हां, परंतु तूने क्या पिछले हफ्ते उन्हें नहीं देखा? उन्होंने क्या किया था? तूने कुछ नहीं देखा? रहने भी दे, तू जानता है। यीशु कहता है, ओह, वो तो मैंने क्षमा कर दिया। इसका कारण है यीशु में आपका विश्वास और उस पर भरोसा। ओह, हम केवल इसके अद्भुत अनुग्रह को पहचाने जो उसने हमें दिया है। परंतु उसके अनुग्रह को हमारे भोग विलास का आवरण बनाए तो ये संपूर्ण रूप अनुचित है। धर्मशास्त्र ऐसा कभी नहीं कहता है। क्या हम पाप करते जाएं कि अनुग्रह बढ़ता जाए? परमेश्वर ना करे। हम जो पाप के लिए मर चुके हैं कैसे पाप में जीवन बिताएंगे? मुझे अनुग्रह से अनुचित लाभ नहीं उठाना है। मैं अनुचित लाभ उठा ही नहीं सकता यदि मैं ये सोचकर पाप करता हूं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, क्षमा कर देगा, तो मैं सर्वथा गलत हूं और गंभीर संकट में हूं। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न है वो पाप नहीं करता। यदि मैं जानते हुए पाप करता हूं तो प्रश्न उठता है कि क्या मैं वास्तव में परमेश्वर की संतान हूं? परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं है कि मैं उसे अपने पापों का आवरण बनाकर ये मान लूं कि परमेश्वर दंड तो देगा नहीं, वो अनुग्रह के द्वारा मेरे पाप ढाप देगा, कदापि नहीं। परंतु ये जानना अच्छा ही होगा कि मैं इस देह में बंधा हूं, इसलिए मैं चूक सकता हूं, गिर सकता हूं, और क्योंकि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं और उसकी सेवा करता हूं, परमेश्वर मुझ पर मेरे अपराधों का दोष नहीं लगाता। वो सांता क्लॉस नहीं है कि सूची बनाकर उसको फिर से दोहराए और पता लगाए कि कौन शैतान है और कौन अच्छा है। उसके पास मेरी कोई सूची नहीं है। उसने तो सारी किताबें फेंक दी हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराधों का यहोवा लेखा ना ले। वो मनुष्य जो अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की सेवा में लगा हो, जिसने अपना इनकार कर दिया है और क्रूस उठाकर उसके पीछे हो लिया हो। जिनको मैंने रख छोड़ा है उन्हें मैं क्षमा करूंगा। मुझे ये बहुत भाता है। यरमिया अध्याय 50 पद 21 से लेकर 23 तक। तू मरातेम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यनाश कर, यहोवा की ये वाणी है। और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उन सबों के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यनाश का सा शब्द हो रहा है। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था वो कैसा काट डाला गया है। बाबुल सब जातियों के बीच में कैसे उजाड़ हो गया है। निस्संदेह बाबुल एक हथौड़ा ही था जो सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था। यरमिया अध्याय 50 पद 24। हे बाबुल, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढकर पकड़ा गया है क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। यशया ने कहा था, यशया अध्याय 45 पद 9, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। परमेश्वर से झगड़ना मनुष्य की कैसी मूर्खता है। तथापि कितने लोग इस भूल के दोषी है। वो दिन महान होगा जिस दिन मैं परमेश्वर से झगड़ा छोड़कर बस उससे कहूं, हे परमेश्वर, मैं तुझसे अब झगड़ना नहीं चाहता, मैं तुझसे दूर भागना नहीं चाहता, प्रभु मैं तेरी ओर हूं और मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूं। इस काम में क्या बुरा है तथा क्या कठिन है? जब आप परमेश्वर का विरोध करते हैं तब आप वास्तव में अपनी भलाई का विरोध करते हैं, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना और उसके उद्देश्यों से उत्तम कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर से झगड़ने का अर्थ है कि आप अपनी स्वयं की भलाई और कल्याण से झगड़ रहे हैं। ये तो एक प्रकार की मूर्खता ही है, परंतु लोग करते हैं। मैं नहीं जानता क्यों परमेश्वर से झगड़ना छोड़ दें तो वो कैसा महान दिन होगा। आपको केवल उसके अधीन समर्पण करके कहना होगा, प्रभु मैं अब झगड़ा नहीं करूंगा, वरन मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं बस तेरी संगति में रहना चाहता हूं, मैं बस तुझसे अधिकाधिक प्रेम करना चाहता हूं। ओ कैसा महान दिन! मेरे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों उसके अधीन समर्पण करने से संघर्षरत रहते हैं। परमेश्वर से झगड़ना शैतानी काम है और ये उनमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है जो परमेश्वर का विरोध करते हैं। यहां देखिए, बाबुल का नाश हो रहा है और इसका कारण है उन्होंने परमेश्वर से झगड़ा किया है। यरमिया अध्याय 50 पद 25। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में काम करना है। सावधान, परमेश्वर ने बाबुल के विरुद्ध अपनी सेना भेज दी है। यरमिया अध्याय 50 पद 26 से लेकर 29 तक। पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बकारियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो, ऐसा सत्यनाश करो कि उसमें कुछ भी ना बचा रहे। उसके सब बैलों को नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाएं, उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बाबुल के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सियोन में ये समाचार देने को दौड़े आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनुधारियों को बाबुल के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने ना पाए, उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो। यहां वही उक्ति है जिसका प्रयोग प्रकाशित वाक्य में किया गया है, जैसा उसने किया ठीक वैसा ही उसके साथ करो। उन्होंने यरूशलेम में यहोवा के मंदिर को उजाड़ा था, उन्होंने मंदिर के पात्रों को लूटा और बाबुल ले गए। सब तो नहीं, परंतु बहुत से, जैसे कटोरे, नाद आदि। यरमिया अध्याय 50 पद 29 में आगे लिखा है, क्योंकि उसने यहोवा इसराइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। उस रात जब बाबुल का नाश हुआ, शाम को बेलशेजर, जो अपने पिता के साथ शासक था, बाबुल में अपने देवता के लिए विशाल प्रीति भोज का आनंद ले रहा था, जो अनेक दिन का उत्सव था। उसने इस राग रंग के भोज के बीच में यरूशलेम से लाए गए मंदिर के सोने चांदी के पात्रों में मदिरा डालकर पी। ये पात्र परमेश्वर के लिए प्रयोग करने हेतु पृथक किए गए थे। जब वे इन पात्रों में मदिरा पी रहे थे और अपने सोने चांदी के देवताओं का गुणगान कर रहे थे, तभी एक हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो बेलशेसर राजा को दिखाई पड़ा। बेलशेसर के घुटने कांपने लगे। उसने अपने पंडितों को बुलाया कि उस भाषा को पढ़कर उसका अर्थ उसे समझाएं, परंतु वे इसे पढ़ न सके। तब दानियल को बुलवाया गया। वो शायद अपने 90 वर्ष के लगभग आयु में था। उसने उसे सच्चा उपदेश सुनाया। तू अपने सोने चांदी के देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, परंतु तू इस सच्चे परमेश्वर को भूल गया जिसके हाथ में तेरी सांसें हैं। तूने अपने पिता से सबक नहीं सीखा कि अपने घमंड के कारण वो अपने राज्य से बाहर रहा, जब तक कि उसने ये ना जान लिया कि यहोवा पृथ्वी पर राज्य करता है। तू उसके अनुभवों को जानते हुए भी अपने आप को यहोवा से ऊंचा उठाता है। यही कारण है कि ये लेख तेरे सामने आया, और इसका अर्थ है कि तू तराजू में तोला गया और कम निकला। इसी रात तेरा राज्य मादी और फारसी लोगों में बांट दिया जाएगा। परमेश्वर की ये घोषणा उसी रात पूरी हो गई। यरमिया की ये भविष्यवाणी पूरी हुई क्योंकि उसने इसराइल के पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने घमंड किया था। यरमिया अध्याय 50 पद 30 से लेकर 38 तक। इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर ना उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इसराइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थ्य है, सेनाओं का यहोवा ये उसका नाम है। वो उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बाबुल के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की ये वाणी है, कसदियों और बाबुल के हाकिम पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूर वीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियें बन जाएंगे। उसके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे। उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे। कुसरू बाबुल नगर को पराजित कर रहा था। उसने परात नदी को नहरों में विभाजित कर दिया जो नगर के आसपास से बहने लगी, और इस प्रकार उस नदी के मार्ग से कुसरू की सेना ने शहर पना के भीतर प्रवेश किया और इसको तहस नहस कर डाला। यहां एक और बात लिखी है, उसके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे। यरमिया अध्याय 50 पद 38 और 29। क्योंकि वो खुदी हुई मूर्तों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं, इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शतुर्मुर्ग उसमें वास करेंगे, और वो फिर सदा तक बसाया ना जाएगा, ना युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहां रोचक बात तो ये है कि कुछ वर्ष पहले इराकी सरकार ने जापानी इंजीनियरों के एक दल को $80 लाख का ठेका दिया कि वे बाबुल नगर का पुनरुद्धार करें। उनका उद्देश्य ये है कि बाबुल को फिर से विश्व का सबसे मनोरम स्थान बनाया जाए। वे अपनी संपूर्ण आमदनी को जो उन्हें पेट्रोलियम के बेचने से प्राप्त होती है इसमें लगा देना चाहते हैं कि इस विशाल और महिमामय स्मारक का पुनर्निर्माण करें कि संसार इसे देखे। परंतु ईरान के साथ युद्ध में उन्होंने अपनी बहुत आमदनी लगा दी थी और आज वे आर्थिक संकट में हैं। अतः बाबुल पुनर्निर्माण की परियोजना अभी स्थगित की गई है। मेरी राय में तो इसका कभी पुनर्निर्माण नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर यहां कहता है फिर सदा तक बसाया ना जाएगा, ना युग युग तक उसमें कोई वास कर सकेगा। यरमिया अध्याय 50 पद 40 से लेकर 46 तक। यहोवा की ये वाणी है कि सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसी ही दशा बाबुल की भी होगी, यहां तक कि कोई मनुष्य उसमें ना रह सकेगा और ना कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय हैं, वे समुद्र की नाई गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बाबुल की बेटी के विरुद्ध पांक्ति बांधे हुए युद्ध करने वालों की नाई आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बाबुल के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसको जच्चा की सी पीड़े उठी। सुनो, वो सिम की नाई आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाले पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वो चरवाहा कहां है जो मेरा सामना कर सकेगा? सो सुनो कि यहोवा ने बाबुल के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वो भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा, निश्चय वो उनकी चराइयों की भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बाबुल के लुटे लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है। ये भविष्यवाणियां अध्याय 51 तक गई है।